नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं
जी।
ये पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक खास उद्बोधन पर आधारित है, रितंबरा प्रज्ञा का अवतरण।
हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन है ये।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और वो कौन सी खास क्षमता है जिसे पूज्य गुरुदेव ने रितंबरा प्रज्ञा कहा है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भाई जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मनुष्य को ना दूसरे प्राणियों से कुछ अलग बनाया है, कुछ विशेष योग्यताओं के साथ।
अच्छा,
मतलब सिर्फ पेट भरना और वंश चलाना, इससे कहीं बढ़कर मनुष्य को एक खास तोहफा मिला, यही रितंबरा प्रज्ञा।
रितंबरा प्रज्ञा, ये शब्द सुनने में ही बहुत वजनदार लगता है, ये असल में है क्या, मतलब सरल शब्दों में?
हाँ देखिए, सरल शब्दों में कहें तो यह है विवेकशीलता, मतलब सही और गलत में फर्क करने की ताकत, विचार करने की क्षमता। और जो ऊंचे आदर्श हैं उनके प्रति एक तरह की निष्ठा, ईमानदारी, ये वो दिव्य ज्ञान की धारा है जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्वर्ग से गंगा की तरह उतरी।
अच्छा,
और आध्यात्मिक भाषा में इसी को गायत्री विद्या कहा गया।
तो आज हम इसी गायत्री के गहरे अर्थ को, मतलब जो सिर्फ मंत्र जपने से कहीं ज्यादा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के दो रूपों की बात की है, स्थूल और सूक्ष्म।
जी,
स्थूल रूप शायद वही है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, जैसे मंत्र, पूजा वगैरह।
हाँ बिल्कुल,
स्थूल रूप वही है जो बाहर से दिखता है, जैसे मंत्र के अक्षर हो गए, माला जपना, पूजा की जो सामग्री होती है।
हाँ हाँ, धूप दीप फूल।
जी, और देवी का एक बाहरी स्वरूप भी, जैसे वो हंस पर बैठी देवी का चित्र या मूर्ति। और अक्सर लोग, आप देखिए, इसी बाहरी रूप की पूजा करके, खुशामद करके सांसारिक लाभ चाहते हैं,
जैसे धन मिल जाए या संतान हो जाए।
हाँ, या परीक्षा में पास हो जाएं। लेकिन पूज्य गुरुदेव यहाँ बिल्कुल साफ कहते हैं कि सिर्फ इस बाहरी रूप से जुड़े रहने पर जो असली लाभ है, मतलब जो आध्यात्मिक उन्नति है जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं, वो नहीं मिलती।
अच्छा, तो मतलब ये बाहरी क्रियाकांड काफी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक तरह का छिलका है। हाँ। असली चीज, असली शक्ति तो सूक्ष्म रूप में है।
तो फिर ये सूक्ष्म रूप क्या है, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है।
हाँ देखिए, सूक्ष्म रूप है गायत्री के जो तीन मूल शिक्षण हैं, जो उसकी कोर टीचिंग है, उसको अपने जीवन में उतारना। हाँ। अपने व्यवहार में लाना।
जी,
इसी से वो रितंबरा प्रज्ञा जागती है। पहला और सबसे जरूरी शिक्षण है अहंकार का त्याग।
अहंकार मतलब ईगो।
हाँ वही, मतलब बड़प्पन की भूख कि मेरा नाम हो, यश मिले, लोग मुझे जाने, दूसरों पर मेरा रौब हो, इस इच्छा को छोड़ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अहंकार जो है ना, ये व्यक्ति की सारी ऊर्जा, सारा समय खा जाता है, फिर उसके पास ईश्वर के लिए या समाज के लिए कुछ करने की ताकत ही नहीं बचती।
उन्होंने वो पिसनहारी स्त्री का उदाहरण भी दिया था।
हाँ बिल्कुल, वो स्त्री जिसने बिना अपना नाम बताए चुपचाप लोगों की भलाई के लिए कुआं बनवा दिया और किसी को पता भी नहीं चला किसने बनवाया। ये है निस्वार्थ भाव, इसी की जरूरत है।
ये तो आज के समय में सोचना भी मुश्किल है, जहाँ हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है।
सही कहा।
और दूसरा शिक्षण है शारीरिक जरूरतों और जो इंद्रियों के सुख हैं, उन पे नियंत्रण रखना।
अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि सिर्फ पेट भरने की चिंता में अपने सिद्धांतों को, अपने आदर्शों को न भूल जाना, ये भरोसा रखना कि भाई ईश्वर ने पैदा किया है तो पेट वो भरेगा ही, और अपनी इंद्रियां जैसे जीभ है उसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना, सिर्फ स्वाद के लिए या नशे के लिए नहीं, बल्कि मीठे वचन बोलने के लिए, दूसरों में उत्साह भरने के लिए।
हाँ ये बात भी सही है,
इंद्रियों का असंयम तो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है।
बिल्कुल। और तीसरा जो मुख्य शिक्षण है वो है लोभ लालच कर विजय पाना, जिसे तृष्णा कहते हैं।
तृष्णा यानी इच्छाएं, कामनाएं।
हाँ।
अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, हद में रखना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब व्यक्ति इन चीजों पर काबू पा लेता है, अहंकार, वासना यानी इंद्रिय सुख की लिप्सा, और तृष्णा यानी लोभ, तभी वो कबीर, रैदास, गांधी जैसे महापुरुषों के रास्ते पर चल सकता है।
अच्छा,
क्योंकि ये लोग अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई में लगे थे। पूज्य गुरुदेव तो इन तीनों को, अहंता, वासना, तृष्णा को, महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस बताते हैं।
अरे मतलब ये राक्षस कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं।
जी हाँ, ये हमारे अंदर बैठकर ही हमारी जो दैवीय शक्तियां हैं, हमारी अच्छाई है, उसको खाते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं।
उन्होंने स्थूल और सूक्ष्म को समझाने के लिए गंगा का उदाहरण भी दिया था, है ना?
हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। जैसे स्थूल गंगा तो वो नदी है जो बह रही है,
जिसे हम देखते हैं, जिसमें स्नान करते हैं। हाँ, लेकिन सूक्ष्म गंगा क्या है? वो है पवित्रता का भाव, शीतलता का गुण और लोक मंगल की सबकी भलाई की भावना।
अच्छा,
तो जैसे गंगा नहाने का असली लाभ सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से नहीं मिलता, बल्कि गंगा की उस निर्मलता और लोक कल्याण की भावना को अपने अंदर उतारने से मिलता है। ठीक उसी तरह गायत्री का असली लाभ सिर्फ मंत्र जपने से नहीं, बल्कि उसके पीछे जो जीवन दर्शन है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, उन्हें अपनाने से मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने खुद 60 वर्षों तक इसी सूक्ष्म रूप को साधने पर, यानी जीवन में उतारने पर ही जोर दिया।
तो मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि गायत्री मंत्र की असली शक्ति उसके शब्दों में उतनी नहीं, जितनी उसके पीछे छिपे हुए जीवन दर्शन में है।
बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि गायत्री या ऋतंभरा प्रज्ञा ये मूल रूप से विवेक की शक्ति है।
विवेक?
हाँ, वो समझ जो हमें सही और गलत, उचित और अनुचित में भेद करना सिखाती है। जैसे कहते हैं ना कि हंस पानी मिले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है।
जी, नीर शीर विवेक।
वही तो, जब ये विवेक, ये ऋतंभरा प्रज्ञा हमारे अंदर जाग जाती है, तभी हमारा जीवन असली में बदलता है। हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं और हमें सच्ची आत्मिक शांति और सामर्थ्य मिलती है, जिसे रिद्धि सिद्धि कहा गया है।
तो ये भीतरी बदलाव ही असली चीज है।
बिल्कुल, भारी कर्मकांड तो बस साधन हो सकते हैं, साध्य तो यही भीतरी रूपांतरण है।
आज की इस बातचीत से एक बहुत गहरा सवाल मन में उठ रहा है
जी,
कि हम अपना जीवन, अपनी ऊर्जा, अपनी जो भी क्षमताएं हैं, उनका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी छोटी मोटी इच्छाओं, अपने अहंकार को पूरा करने में ही लगे हैं, या फिर उस ऊंचे उद्देश्य के लिए जी रहे हैं जिसके लिए ये अनमोल मनुष्य जीवन मिला है?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।
इस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।